भागवत सार की श्रृंखला में सातवें स्कंद के बारहवें अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है पूर्ण समाज चार आध्यात्मिक वर्ग। कृपया इसके श्लोक को दोहराइए। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समामं नान्तं यतेरपि गुरुर्वृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यार्तुगामिनः। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समामनान्तं यतेरपि गुरुर्वृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यर्तुगामिनः। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाम्नान्तं यतेरपि गुरुर्वृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यर्तुगामिनः। एतद् यह सर्वं सारे गृहस्थस्य गृहस्थ का समामनातम वर्णित यते अपि यहां तक कि सन्यासी का गुरु वृत्ति विकल्पेन गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए गृहस्थस्य गृहस्थ का ऋतुगामिनः प्रजनन के लिए ऋतुकाल के समय ही मैथुन करना। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सारे नियम तथा विधान गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, किंतु गृहस्थ को उपयुक्त अवसर पर प्रजनन के लिए मैथुन करने के लिए गुरु अनुमति प्रदान करते हैं। तात्पर्य, कभी कभी यह गलत समझ लिया जाता है कि गृहस्थ को किसी भी समय मैथुन करने की अनुमति है। यह गृहस्थ जीवन की मिथ्या धारणा है। आध्यात्मिक जीवन में चाहे कोई गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी, हरेक व्यक्ति गुरु के अधीन रहता है। ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को मैथुन में रत होने के लिए कठोर वर्जन है। इसी प्रकार गृहस्थों के लिए भी कठोर प्रतिबंध है। गृहस्थों को गुरु के आदेशानुसार ही स्त्री संभोग में अनुरक्त होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर उल्लेख है कि मनुष्य अपने ही अपने गुरु के आदेशों का पालन करे, गुरु वृत्ति विकल्पेना। गुरु की आज्ञा होने पर गृहस्थ कामासक्त जीवन स्वीकार कर सकता है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि, धार्मिक विधि विधानों की अवज्ञा किए बिना कामासक्त जीवन बिताना ही धर्म है। गृहस्थ को गुरु की आज्ञा से प्रजनन के लिए उपयुक्त अवधि में स्त्री गमन करने की अनुमति है। यदि गृहस्थ को गुरु किसी विशेष समय में स्त्री संभोग करने की अनुमति देते हैं तो गृहस्थ ऐसा कर सकता है, किंतु यदि गुरु का आदेश ना हो तो गृहस्थ को ऐसा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि गर्भाधान संस्कार अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अपने गुरु की अनुमति प्राप्त कर ले, तभी वे संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी पत्नी के पास जाए, अन्यथा नहीं। सामान्यतया ब्राह्मण आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, किंतु कुछ ब्राह्मण अपने गुरु की आज्ञा से गृहस्थ बनकर स्त्री संभोग करते हैं। क्षत्रिय को एक से अधिक पत्नियों से विवाह की छूट है, किंतु इसे भी गुरु की ही आज्ञा से करना चाहिए। गृहस्थ होने का अर्थ यह नहीं होता कि वे चाहे जितनी बार विवाह करे और स्वेच्छा पूर्वक कामासक्त जीवन के भोग में रत हो, यह कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को अपना सारा जीवन गुरु के मार्ग निर्देशन में संचलित करना होता है। जो गुरु के निर्देशानुसार आध्यात्मिक जीवन बिताता है वही कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का इच्छुक व्यक्ति यदि मनमाने ढंग से कर्म करता है और गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसको कोई आश्रय नहीं मिल सकता। यस्य प्रसादा न गति कुतोपि, गुरु के आदेश के बिना गृहस्थ को भी कामासक्त जीवन में अनुरक्त नहीं होना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरव श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाद्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते मदेक बंधो मत संगे मत गुरो मन महाधना मन निस्तार कमद भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु तदाईन अति नीचो चतह कर हानमुंच कदाचिन माम प्रेम नारद कंठ यो सुर। हरे कृष्ण। बारहवां अध्याय जिसमें अब नारद मुनि आध्यात्मिक विभागों का वर्णन करेंगे। पिछले अध्याय में उन्होंने सामाजिक विभागों का वर्णन किया, वर्णों का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि। और अब जो चार आध्यात्मिक स्थितियां हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उनका वर्णन इस अध्याय से करेंगे। प्रमुखता ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ का वर्णन उन्होंने इस अध्याय में किया है। पहले 16 श्लोकों में उन्होंने ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य हैं उनको दिया है बड़े विस्तार से। फिर 17वें श्लोक से लेकर करीब 23वें श्लोक तक उन्होंने वानप्रस्थ धर्म का वर्णन किया है। और फिर अंतिम 24 से लेकर 31वें श्लोक तक वे ये वर्णन करते हैं कि एक वानप्रस्थी को कैसे अपने देह को त्यागना चाहिए। तो ये तीन प्रमुख वर्णन उन्होंने इस अध्याय में किए ब्रह्मचारी का कर्तव्य। हालांकि थोड़ा बहुत गृहस्थ के वर्णन भी किया, लेकिन बहुत विस्तार से नहीं। ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन है, वानप्रस्थ के कर्तव्यों का है, और फिर कैसे वानप्रस्थ को देह त्यागना चाहिए इसका वर्णन है। तो प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को नारद मुनि बड़े ही प्रसिद्ध श्लोक से। प्रभुपाद कई बार इस श्लोक को कहा करते थे, ब्रह्मचारियों के लिए ये क्या कर्तव्य हैं उसमें बताते हैं। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर हितम, तो बताते हैं कि जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है। तो अब उनके कर्तव्यों को वो वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन, वसन यानी रहना चाहिए कहां पर, गुरुकुले। ब्रह्मचारी जीवन का अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मचारी विवाह नहीं करे कोई व्यक्ति और अपने घर में रहे और कहे मैं ब्रह्मचारी हूं। तो इसलिए सबसे पहला लक्षण ब्रह्मचारी का नारद मुनि कहते हैं ब्रह्मचारी गुरुकुले। अगर ब्रह्मचारी हैं तो गुरुकुल में रहना चाहिए, अन्यथा वो ब्रह्मचारी नहीं। आजकल लोगों के मन में ये कई भावनाएं ऐसी आ गई हैं कि वे लोग अपने घर में रहते हैं, व्यापार करते हैं या कोई कार्य करते हैं, विवाह नहीं करते और सोचते हैं हम ब्रह्मचारी हैं, यही तो ब्रह्मचारी जीवन है। क्योंकि लोगों के मन में ब्रह्मचारी शब्द सुनते ही एक ही बात आती है, जिसने विवाह नहीं किया। बस विवाह न करना ये ब्रह्मचारी जीवन का एक भाग है, ये पूर्ण ब्रह्मचारी जीवन नहीं है। ऐसे तो कई लोग हैं जो विवाह नहीं करते, वे सारे ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। तो इसीलिए ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन, सबसे पहली चीज नारद मुनि कहते ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहना चाहिए। घर में रहकर, बाहर रहकर ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। और रहना चाहिए तो क्या करना चाहिए, वसन दांतो। दांतो का अर्थ है उनको अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। बाहर समाज में रहकर इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है, इसीलिए गुरुकुल है, गुरुकुल में रहें। गुरुकुल में रहने का क्या लाभ होता है, गुरुकुल में रहकर व्यक्ति किसी के अधीन रहना सीखता है। जब व्यक्ति अपने घर में रहता है, समाज में रहता है, व्यापार करते हुए केवल विवाह नहीं करता, तो वो स्वतंत्र भाव है उसका। ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है कि उस स्वतंत्रता को त्यागें। ब्रह्मचारी ही क्या, किसी भी भक्त के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये स्वतंत्रता है जो हमें कृष्ण से दूर रखे हुई है। हम स्वतंत्र भाव चाहते हैं, इसीलिए इस जगत में हैं। स्वतंत्र होना चाहते हैं, इसीलिए इस जगत में है। इस स्वतंत्रता को त्यागना ये मुक्ति का पथ है। इस जगत में लोग सोचते हैं कि अपनी स्वतंत्रता त्याग देने से हमें कष्ट होगा, हम पराधीन हो जाएंगे, हमें एक गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। इसलिए कोई देश गुलाम नहीं होना चाहता, हर कोई स्वतंत्रता चाहता है। तो इस जगत में जब हम स्वतंत्रता का शब्द सुनते हैं तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है आनंद, मुक्ति। और जब हम सोचते हैं कि नहीं, स्वतंत्रता त्याग देनी है, दास बनना है, तो मन में आता है नहीं, ये तो पराजय है। क्योंकि साधारणता ऐसा ही होता है, अगर किसी को कहा जाए समर्पण किया, एक एक सेना ने दूसरी सेना के प्रति समर्पण कर दिया, अर्थात हार गए। डाकुओं ने पुलिस को समर्पण कर दिया, अर्थात हार गए। तो इसीलिए जब हम लोग समर्पण शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हार का प्रतीक है, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, इसीलिए गुरुकुल में नहीं रहूंगा, बाहर रहूंगा, स्वतंत्र रहना चाहता हूं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसलिए विवाह भी नहीं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया, वो रही नहीं। अब चैतन्य महाप्रभु उस समय गृहस्थ जीवन में थे, उन्होंने अभी तक संन्यास स्वीकार नहीं किया था, थोड़ा समय बाकी था, करने वाले थे, लेकिन अभी तक ना तो किसी को बताया था ना उन्होंने संन्यास स्वीकार किया था। तो एक समय शची माता ने महाप्रभु से कहा कि तुम्हें विवाह करना चाहिए, दूसरा विवाह करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हां, जब तक मैं गृहस्थ जीवन में हूं मुझे पत्नी के साथ रहना चाहिए। अर्थात वो कह रहे थे कि मैं जल्दी ही जाने वाला हूं संन्यास के लिए, लेकिन जब तक हूं यहां पर तब तक मुझे पत्नी होनी चाहिए, साथ में रहना चाहिए। अर्थात उन्होंने एक बहुत सुंदर संदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में है, बाहर है। तो दो ही स्थान हैं पुरुषों के लिए, या तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहें या गृहस्थ आश्रम में, और फिर उनसे आगे के आश्रमों की ओर बढ़ें, बस तीसरा कोई मार्ग नहीं है। कि ना तो ब्रह्मचारी हैं गुरुकुल में रह रहे हैं, ना ही गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, स्वतंत्र हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, तो ये ब्रह्मचारी जीवन नहीं। इसीलिए नारद मुनि पहला ही चीज कहते हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो। दांतो अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखे। तो आश्रम में रहकर ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी जिह्वा है, हमारी नसिका है, हमारी त्वचा है, ये सारी चीजें जो भागती हैं इंद्रिय भोग की ओर, ब्रह्मचारी जीवन में उसको वश में किया जाता है, वसन दांतो। और किस लिए रहता है ब्रह्मचारी, उद्देश्य क्या होना चाहिए, गुरोर हितम, अपने हित के लिए नहीं रहता है। ये जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अपने हित के लिए गुरुकुल में रह रहा है वो भी स्वतंत्र भाव है। गुरोर हितम, गुरु के हित के लिए। तो प्रश्न आता है, अगर गुरु के हित के लिए रहेंगे तो हमारे आनंद का क्या, हमेशा केवल जो गुरु कहेंगे वही करना पड़ेगा, हमें आनंद नहीं आएगा। गुरोर हितम अगर वो रहता है तभी आनंद को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सच्चा आनंद अपनी स्वतंत्रता को त्यागने में है। जब तक स्वतंत्र भाव है तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। सच्ची स्वतंत्रता समर्पण में है। जिस दिन हम समर्पण करते हैं हम स्वतंत्रता के पथ पर चलने लगते हैं। तो इसलिए जो समर्पण शब्द हम बाहर सुनते हैं जिससे घबरा जाते हैं, पराजय, भक्ति में समर्पण पहली स्थिति है। अगर समर्पण नहीं है तो कैसी भक्ति है। समर्पण आनंद की ओर ले जाता है, समर्पण सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, इसीलिए आवश्यक है समर्पण। तो ये वो समर्पण नहीं है जहां व्यक्ति हार कर किसी के सामने अपने अस्त्र शस्त्रों को रख देता है। ये वो समर्पण है जहां स्वेच्छा से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर भगवान के सामने अपने जीवन को रख देता है, उसे समर्पण कहते हैं। अर्पण करना, सम्यक रूपेण अर्पण, उसे समर्पण कहते हैं। पराजय को समर्पण नहीं कहा जाता है। अर्पण कर रहे हैं, अपना जीवन अर्पण कर रहे हैं भगवान को, अपनी इच्छाओं को अर्पण कर रहे हैं भगवान को, अपनी स्वतंत्रता को अर्पण कर रहे हैं भगवान को, ये समर्पण है। तो इसीलिए गुरुकुल में रहे गुरोर हितम, गुरु को समर्पण करे, भगवान को समर्पण गुरु के समर्पण के द्वारा किया जाता। तो जब हम गुरुकुल में रहते हैं तो हमें गुरु को समर्पण कर देना चाहिए, उनके हित के लिए जीना चाहिए। कभी कभी बहुत कष्ट होता है, हमारी इच्छाएं कुछ और करना चाहती हैं, हम चाहती ये ठीक मार्ग है, वो ठीक मार्ग है, हमें कहा जाता है नहीं ऐसे करो, बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। ये चाहिए भक्ति में प्रगति के लिए, ये चाहिए कि हम उस स्वतंत्रता को, उस भोग की प्रवृत्ति को, दर्द भी हो तो भी निकालें हृदय से, नहीं तो जाएगी नहीं ये प्रवृत्ति, इतनी कठिन है। ब्रह्मचारी बन जाते हैं, कई वर्षों तक ब्रह्मचारी रहते हैं, आनंद लेने की प्रवृत्ति नहीं जाती, सुविधाओं की प्रवृत्ति नहीं जाती। एक किसी मंदिर को मंदिर के अध्यक्ष बनने की प्रवृत्ति नहीं जाती। इसीलिए जब गुरुकुल गुरु और हितम के लिए रहते हैं, हमें कहा जाता है वैसे करना, सबसे अच्छा ब्रह्मचारी जीवन गुरु और हितम। और आचरण कैसा हो उसका, नारद मुनि कहते हैं आचरण दासवत नीचो। आचरण कैसा होना चाहिए ब्रह्मचारी का, दासवत, एक दास की तरह रहे बस। एक दास के लिए क्या स्वतंत्रता है, दास जाकर मालिक से नहीं कहता मालिक जरा आज पनीर और कुछ सब्जी खिलाइए, ये कहां आप रोज रोज खिचड़ी खिला रहे हैं। दासवत, उसको दास के समान रहना चाहिए, तो ये नारद मुनि कहते हैं। और नारद मुनि कह रहे हैं इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए कि वो ब्रह्मचारी हैं और श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैं, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी नारद मुनि। तो इसीलिए दासवत रहना चाहिए ब्रह्मचारी को गुरुकुल में, गुरु और हितम आचरण दासवन। और कैसे, नीचो, नीच मतलब कभी कभी शब्द को गलत समझा जाता है कि एक ब्रह्मचारी को नीच मान नीच रहना चाहिए। तो जो गृहस्थ अन्य है वो कह रहे देखो ब्रह्मचारी को नीच रहना चाहिए, ये ज्यादा ऊपर नहीं आना चाहिए। नीच का अर्थ होता है समर्पित भाव, नीच का अर्थ ये नहीं होता है कि उसको गिराकर दबाकर उसको रोज डंडे मारकर रखा जाए, नीच का अर्थ है समर्पित भाव। तो आचरण कैसा होना चाहिए, दासवत, और दास कैसे, पूर्ण समर्पित भाव में। नीच, नीच मतलब कोई नीच व्यक्ति अपने आप को बहुत श्रेष्ठ नहीं मान सकता, जो व्यक्ति अपने आप को हृदय से नीच मानता है वो दरअसल श्रेष्ठ है। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं मंदिर में नहीं जा सकता, जगन्नाथ मंदिर कभी प्रवेश नहीं किया उन्होंने, क्यों, अपने आप को बड़ा नीच मान रहे थे कि मेरा जन्म यवन कुल में हुआ है, कैसे मैं भगवान के मंदिर में प्रवेश कर सकता हूं। ये है नीचवत, ये है समर्पित भाव, इसीलिए वे लोग श्रेष्ठ हैं। सनातन गोस्वामी महाप्रभु से कहते हैं कि मैं दूसरे रास्ते से केवल इसलिए आया क्योंकि अगर ये रास्ते से आता तो पुजारी अभी भोग लेके जाने का समय है, मेरी छाया पड़ जाती उसके ऊपर, दूषित हो जाता। ये नीचवत आचरण है, समर्पित भाव, कि मेरी कोई श्रेष्ठता नहीं है, मेरा समर्पण है बस आपके प्रति, तो इसको कहते नीचता। तो इसीलिए कैसे रहे, आचरण कैसा हो, आचरण दासवत नीचो और गुरुर सुदृढ़ सौहृद। तो गुरु के साथ कैसा उसका व्यवहार हो, एकदम बहुत घनिष्ठ मित्र की तरह, घनिष्ठ मित्र, सुदृढ़, ऐसी मित्रता हो जो कभी टूट नहीं सके। क्यों, क्योंकि अगर गुरु से वो मित्रता नहीं होगी, गुरु से प्रेम नहीं होगा, तो वो बाहर जाकर मित्रता और प्रेम ढूंढेगा। इसीलिए गुरु के साथ होना चाहिए वो मित्रता और वो प्रेम। तो ये पहले ही श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, देखिए हमारे लिए कितना आवश्यक है ब्रह्मचारियों के लिए विशेष करके, कि कैसे वो आश्रम में रहें, किस भाव में रहें, उनका आचरण कैसा हो। आगे बहुत सारे नियमों को वो देते हैं, लेकिन ये प्रमुख उन्होंने नियम दिए कि कैसे उनको रहना चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं कि सुबह और शाम उन्हें गुरु की, सूर्य की, भगवान की, अग्नि की आराधना करनी चाहिए। ये जब हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्रों का, तो हम लोग उस तरह उनकी आराधना करते हैं। सूर्य के लिए मंत्र है, गुरु के लिए मंत्र है, भगवान के लिए मंत्र है, तो ऐसे अलग अलग मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। एक ही गायत्री नहीं है। ये लोगों में भ्रांति है कि बाहर लोग सोचते हैं कि गायत्री मतलब एक ही, वो जो चलता रहता है, किसी को फोन करो तो गायत्री वो चालू हो जाता है या अन्य, वो नहीं। वो तो एक प्रकार की गायत्री, ऐसे कई प्रकार की गायत्री हैं। भगवान के हर अवतार के लिए एक अलग गायत्री है, तो ऐसे गायत्री मंत्र को जप करें। और फिर साथ साथ नारद मुनि कहते गुरुकुल में रहकर क्या करें, वैदिक मंत्रों का पठन। ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है कि अध्ययन करे, अध्ययन से भागे नहीं, नहीं तो वो अच्छे ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। क्योंकि ज्ञान की तलवार चाहिए इन इन आसक्तियों को काटने के लिए, अन्यथा बड़ा सरल है हमारे लिए ब्रह्मचारी आश्रम में आकर भी केवल समय की बर्बादी करना। इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यक है कि वे बड़े ध्यान से वैदिक अध्ययन करें, कम से कम अध्ययन नहीं तो सुने ध्यान से आंखें खोलकर जब भागवत कही जाती है, तो ध्यान पूर्वक वैदिक मंत्रों का अध्ययन ब्रह्मचारियों के लिए करना बहुत आवश्यक है। आगे वो कहते हैं कि ब्रह्मचारी को बहुत मृदु होना चाहिए। मृदु अर्थात जेंटलमैन, जैसे प्रभुपाद कहते थे। प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद से पूछा एक बार आंदोलन का उद्देश्य, प्रभुपाद ने कहा कि वी वॉन्ट टू क्रिएट फर्स्ट क्लास जेंटलमैन, माई डिवोटीज विल बी रिकॉग्नाइज बाय हाउ दे आर बिहेविंग, तो हाउ विल दे बिहेव, दे विल बी फर्स्ट क्लास जेंटलमैन, प्रभुपाद कहते हैं। जब प्रभुपाद से पूछा गया कि आपके जो भक्त होंगे उनको कैसे पहचानेंगे, तो प्रभुपाद ने यह नहीं कहा कि देखना सड़कों पर उनकी आंखों में आंसू होंगे, कपड़े फटे होंगे, हा कृष्ण चिल्ला रहे होंगे, वो मेरे भक्त हैं, नहीं। प्रभुपाद ने कहा फर्स्ट क्लास जेंटलमैन, बहुत ही प्रथम श्रेणी का सभ्य पुरुष। तो ये ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को उस मृदु भाव में रखे, अहंकार प्रकट नहीं करे। हम लोगों को हो जाता है अहंकार, कभी कभी कोई ब्रह्मचारी बनता है, कोई बहुत बड़े घर से आया होता है, उसके पास बहुत धन होता है, करोड़ों रुपया होता है, फिर वो कभी ब्रह्मचारी बन जाता है भगवान की कृपा से, तो वो उस अहंकार को बनाए रखता है। अरे ये अभी अभी आया, मैं जानता हूं कहां से हूं, मेरे घर को जानते हो मैं कौन हूं। या कोई बहुत विद्वान रहा हो ब्रह्मचारी बनने से पहले, तो उसको अपनी विद्वत्ता का ज्ञान अहंकार हो जाता है कि जानते हो मैं कौन हूं, मैंने ये डिग्री हासिल की है, आप क्या हो, आपने तो स्कूल भी नहीं गए इत्यादि। तो ये सब नहीं, बहुत मृदु, उस सब को भूल जाना। आपकी डिग्री, आपका धन, आपका परिवार, आपका कुल, सब गठरी बांधकर मंदिर के बाहर, गुरुकुल के बाहर फेंक कर आना, तब आप अच्छे गुरु, आप अच्छे भक्त बन सकोगे। तो वो कहते हैं कि ऐसे मृदु होना चाहिए। और आगे वो कहते हैं कि ब्रह्मचारी को आवश्यकता से अधिक खाना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ब्रह्मचारी बाकी लोगों से ज्यादा खाते हैं लेकिन ब्रह्मचारी को जितनी आवश्यकता है उतना खाना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो इंद्रियां शक्तिशाली हो जाएंगी, इंद्रिया वश में नहीं हो पाएंगी। जैसे उपदेश अमृत में प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारी जो जिह्वा है, हमारा जो पेट है और जननेन्द्रियां, तीनों एक लाइन में है। जब जिह्वा को वश में नहीं करते तो पेट वश में नहीं रहता, पेट को वश में नहीं करते तो जननेन्द्रियां वश में नहीं रहती। इसीलिए जितनी आवश्यकता है उतना खाना चाहिए। हाँ, शुरुआत की अवस्था में, युवा अवस्था में ठीक है, शरीर को शक्ति के लिए जितना है चाहिए खाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसको कम करना चाहिए। हमेशा बहुत ज्यादा खाते नहीं रहना चाहिए ब्रह्मचारी को, अन्नमय अवस्था से ऊपर उठना चाहिए। हमेशा बस खाने के लिए क्या मिले, क्या मिले, क्या अच्छा बना, स्वीट कहाँ है, स्वीट राइस छुपा के रखा कि नहीं, अगर फेस्टिवल के दिन गुलाब जामुन बने हैं तो पूरा एक बकेट भरकर अंदर आश्रम में गई कि नहीं गई, ये सब चीजें नहीं। ब्रह्मचारी को त्यागना चाहिए जब तक जिह्वा को वश में नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग रोज गाते हैं, तार मध्य जिह्वा अति, गाते हैं ना, आशा है आप लोग सब कहते होंगे, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते। शरीर अविद्या जाल, जडेन्द्रिय ताहे काल, जीवे फेले विषय सागरे, तार मध्य जिभा अति। सारी इंद्रियों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली जिह्वा है। क्यों? उसको वश में नहीं करेंगे तो बाकी सारी इंद्रिय वश में नहीं होती। तो इसीलिए ये खाना, वो खाना, खाने की इच्छा। कभी कभी गृहस्थ भक्त ब्रह्मचारियों को अपने घर पर प्रसाद के लिए बुलाते हैं तो फिर ब्रह्मचारी सोचने लगते हैं किस गृहस्थ के घर जाऊं, क्योंकि उनके अच्छा मिलता है तो उनके जाऊंगा, इनके नहीं जाऊंगा। ये ब्रह्मचारी जीवन नहीं। अपनी तो जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए, और अनिवार्य है कि जो उपवास के दिवस है उस दिन उपवास करना चाहिए ब्रह्मचारियों को, अन्यथा शक्ति कहां से आएगी। हम लोग कभी कभी कहते हैं हमसे उपवास नहीं होता। अगर आप उपवास नहीं कर सकते कैसे अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे, कैसे आप कृष्ण की ओर जाएंगे, कैसे कृष्ण को पाने के प्रयास करेंगे। इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर हमें अपने उदर को वश में रखना है, उपदेशामृत में समझाते हैं, तो हमें अनिवार्य है कि हमें तिथियों पर उपवास करना चाहिए। एकादशी है, आविर्भाव तिरुभाव है, आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव है, कृष्ण का आविर्भाव इत्यादि, बड़ी कड़ाई से पालन करना चाहिए। इससे मदद मिलती है इंद्रियों को वश में रखने में, ब्रह्मचारी बने रहने में। तो नारद मुनि कहते हैं कि बहुत कम, जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए, एकदम कम भी नहीं कि बहुत कम खा लिया शक्ति ही नहीं है शरीर में सेवा करने की, और इतना ज्यादा भी नहीं खा लेना चाहिए कि फिर शक्ति नहीं है शरीर में सेवा करने की क्योंकि नींद आ रही है। तो इसीलिए जितना आवश्यक है उतना खाना और अच्छी तरह भगवान की सेवा करना, ये ब्रह्मचारी जीवन का उद्देश्य है। साथ ही साथ नारद मुनि कहते हैं कि उसको बड़ा दक्ष होना चाहिए हर चीजों में, और बड़े उत्साह से सेवा करनी चाहिए हमेशा। ब्रह्मचारियों को डल नहीं होना चाहिए। डल समझते हैं एकदम ऐसे देखे तो पता चले भी गिरने वाले हैं, बहुत ज्यादा सेवा हो गई है हमेशा, ऐसे ब्रह्मचारियों को एक्टिव एकदम बड़े उत्साह से रहना चाहिए हर सेवा में। जैसे हम उस दिन भी बता रहे थे कि अगर हमें सेवा का भाव क्या होना चाहिए, हमें भागना चाहिए ब्रह्मचारियों को सेवा के लिए। ये नहीं कि किसी ने सेवा दी तो सारा मुंह उतर गया और हरे हरे अभी क्या फिर से सेवा करनी पड़ेगी, अभी ऑल्टर में जाकर आए हैं अभी फिर से ये करना है, नहीं तैयार। नारद मुनि कहते हैं उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और फिर नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मचारियों को स्त्रियों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्त्रियों से बात नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों से संग नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के विषय में बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए जो स्त्रियों के विषय में बात करता। तो बहुत कड़क नियम। तो ये इसका अर्थ ये नहीं है शास्त्र स्त्रियों के विरुद्ध है। तो स्त्रियों को पुरुषों से और पुरुषों को स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो बहुत स्पष्ट रूप से नारद मुनि यहां कहते हैं कि चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो, लेकिन उसको भी स्त्रियों से संग नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का संग गृहस्थों को अनुमति है, और फिर वो ये श्लोक को कहते हैं कि गृहस्थ है वो स्त्री संग कर सकते हैं, लेकिन वो भी नियम में, ऐसे नहीं कि जो मन में आया। जैसे गृहस्थ जीवन प्रभुपाद कहते लाइसेंस नहीं है भोग लेने के लिए, ये भी नियम में होना चाहिए। तो नारद मुनि कहते नियम में रहे, गुरु से कहकर गुरु की अनुमति से उनको काम जीवन में आसक्त होना चाहिए, लेकिन गुरु के बिना नहीं, गुरु की अनुमति के बिना नहीं। तो इसीलिए गृहस्थ जीवन का वर्णन किया। फिर उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जीवन में बिल्कुल अलग, कोई आवश्यकता नहीं है स्त्रियों से बात करने की, चाहे सेवा के नाम पर या किसी और नाम पर, क्योंकि हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। फिर वो उदाहरण देते हैं नारद मुनि कि व्यक्ति को अपनी पुत्री के साथ भी अकेले नहीं रहना चाहिए, स्त्री अब इंद्रियां बहुत प्रबल है। और फिर वो जो प्रसिद्ध उदाहरण प्रभुपाद दिया करते थे कई बार, नारद मुनि कहते हैं कि स्त्री अग्नि के समान है और जो पुरुष है ये मक्खन के समान है, जब दोनों को साथ में लाया जाएगा तो निश्चित मक्खन पिघल जाएगा। इसीलिए स्त्रियों में कोई दोष नहीं है, पुरुषों में कोई दोष नहीं है, दोनों के साथ में आने में दोष है। मक्खन अगर अपने आप में रहे कोई गलती नहीं है, अग्नि में कोई गलती नहीं है, लेकिन साथ में आएंगे मक्खन पिघल जाएगा। चाहे कितना ही समय आपने फ्रिज में रखा हो, कभी कभी हम लोग फ्रीजर में मक्खन रखते हैं, बहुत कड़क हो जाता है, उसको चाकू से भी नहीं काट सकते हैं। आपने 20 साल तक एक मक्खन के पैकेट को आपने फ्रिज में रख दिया, इतना वो बहुत कड़क, आपसे चाकू से भी नहीं कट रहा है, बस को थोड़ा समय अग्नि के पास लेकर आइए, क्या होगा, चाकू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो यही है, 20 साल तक हमने ब्रह्मचारी जीवन का बड़ी कड़ाई से पालन कर लिया और फिर हम थोड़ा बहुत समझने लगे कि हम तो अभी माया से परे चले गए। माया को चुनौती नहीं देनी चाहिए ब्रह्मचारियों को, और अगर माया को चुनौती नहीं देनी है तो उन्हें हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यक है, ब्रह्मचारी ही नहीं सभी भक्तों के लिए आवश्यक है कि हम लोग आकर्षण से बचने का प्रयास ना करें। ऐसे कहा जाता है कि आकर्षणों से बचना चाहिए, आकर्षणों से बचने से अच्छा है संग से बचने का प्रयास करें, संग ही ना करें। संगात संजायते कामा, ये जो काम वासना है, आकर्षण है, ये कैसे आते हैं, जब आप संग करोगे, संग ही नहीं करो तो फिर आकर्षण कैसे। इसीलिए ब्रह्मचारियों को बड़े ध्यान पूर्वक ही समझ लेना चाहिए कि उन्हें आकर्षणों से बचने का प्रयास नहीं करना है, संग से बचने का प्रयास करना। अगर वो स्त्रियों का संग ही नहीं करेंगे तो फिर आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन अगर संग करेंगे तो फिर वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, 10 साल के ब्रह्मचारी, 20 साल के ब्रह्मचारी, सन्यासी, उनको आकर्षण होगा ही, इसीलिए संग ही ना करें। तो पहली चीज ब्रह्मचारी ये सीखे कि आकर्षणों से बचने से अच्छा है संग से बचें। दूसरी चीज, अगर रक्षण चाहते हैं, माया को चुनौती नहीं दें, संरक्षण में रहें, तो संरक्षण चाहते हैं तो किसका संरक्षण लेना चाहिए उन्हें, नियमों का। ब्रह्मचारियों के लिए कड़क नियम क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि अगर वो नियम में नहीं रहेंगे, कड़क नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर माया में पड़ेंगे। तो माया को चुनौती न देने का अर्थ है नियमों के अधीन रहें। कभी कभी हमारे मन में आता है ये नियम क्यों आवश्यक है, हम तो कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम करने के लिए क्या नियम चाहिए। हाँ, इस जगत में प्रेम करने के लिए कोई नियम नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं, वो तो केवल एक आकर्षण है, आकर्षण के लिए कोई नियम नहीं चाहिए। अगर एक ब्रह्मचारी किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होता है तो उसके लिए क्या नियम है, उसको तो कोई नियम नहीं है आकर्षित होने के लिए, आकर्षण के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन प्रेम के लिए नियम है। तो ये जो नियम है कड़क कड़ाई से पालन, हमें उस आकर्षण से दूर रखते हैं जो हमें कृष्ण से दूर रख रहा है। इसलिए अगर ब्रह्मचारी नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमेशा उस आकर्षण की ओर खिंच जाएंगे। फिर स्त्री का आकर्षण हो सकता है, धन का आकर्षण हो सकता है, सत्ता का आकर्षण हो सकता है, स्वतंत्रता का आकर्षण हो सकता है। कभी कभी कोई ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं जिनको स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं है, धन की कोई कामना नहीं है, उनको कोई सत्ता भी नहीं चाहिए, हो सकता है उनको कोई पदवी नहीं चाहिए, लेकिन एक स्वतंत्रता की ओर आकर्षण हो जाता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, स्त्री नहीं, धन नहीं, न धनम, न जनम, न सुंदरिम, कविताम वा जगदीश काम, ये स्वतंत्रता की ओर आकर्षण हो जाता है कि अब यहां रहना बड़ा कठिन है, क्यों, मुझे हमेशा कहा जाता है ये नियम पालन करो वो नियम। जरूरी है ब्रह्मचारी के लिए, नारद मुनि कह रहे हैं, क्योंकि संरक्षण नियम करते हैं माया से संरक्षण। तो इसीलिए नारद मुनि कहते हैं स्त्रियों का संग नहीं करें और दूसरी ओर नियमों में बंधे रहें, कड़क नियम का पालन करें, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। वैसे आज के समय में अगर हम लोग देखें, जैसे ब्रह्मचारियों का वर्णन करते हुए नारद मुनि ने कई चीजें कही कि उनको हाथ में दंड लेना चाहिए, वस्त्र कैसे धारण करने चाहिए इत्यादि, और एक बहुत अच्छा नियम उन्होंने दिया कि हमेशा भिक्षा मांगनी चाहिए ब्रह्मचारियों को, बाहर जाकर होगा सुबह से शाम भिक्षा मांगे, जो शाम को इकट्ठा हो लाकर गुरु को दे दें, और फिर नारद मुनि कहते हैं अगर गुरु कहें तो खाएं, नहीं तो भूखे रहें। हम लोग को हंसी आएगी ना ये सुनकर, ऐसे कैसे हो सकता है, गुरु हो या ना हो 9 बजे हमको तो जाना है प्रसाद, या जो भी टाइम हुआ प्रसाद हम प्लेट लेकर पहुंच जाना है, पूछने की आवश्यकता नहीं है। नारद मुनि कहते भीख मांग कर लेकर आना चाहिए ब्रह्मचारी को, गुरु को दे देना चाहिए सारा, और अगर गुरु कहे तो खाना है, गुरु किसी दिन भूल जाए तो फिर उपवास करना, ये नियम है ब्रह्मचारी के लिए। अर्थात गुरोर हितम, गुरु के अधीन रहना सीखना। व्यवहारिक तौर में ये नहीं हो पाता तो इसीलिए कम से कम इस भाव में रहना चाहिए। तो आज के समय में इस्कॉन में हम लोग कैसे भिक्षा मांगने जाते हैं, ग्रंथ वितरण करने जाना चाहिए। ग्रंथ वितरण करने में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लोग कुछ कह रहे चलो जाओ नहीं करना, ग्रंथ वितरण या मंदिर के लिए दान इकट्ठा करने जाना चाहिए। तो नारद मुनि कहते हैं ये आवश्यक है क्योंकि इससे नम्रता बनी रहती, नहीं तो अहंकार आता है हम बड़े श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैं। क्योंकि मंदिर में रहते हैं, लोग आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, आप महान हैं, आपने ये किया, आपने, तो वो सारा अहंकार बढ़ता रहता है। इसलिए बाहर सड़क पर जाना चाहिए, जब लोग कहेंगे बोलाना नहीं चाहिए, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो, तो वो सारा जो अहंकार वो टूटे, वो सब भूल जाएंगे कि व्यास आसन पर बैठकर कितना मेरे लोग कितना हार पहना रहे थे, गुणगान कर रहे थे। तो नम्र रहने के लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि जाना चाहिए, मांगना चाहिए। और स्त्रियों के बारे में विशेष करके नारद मुनि कहते हैं कि जितना हो सके दूर रहना चाहिए स्त्रियों से, ब्रह्मचारियों को कोई बात करने की आवश्यकता नहीं। तो आज के जैसे हम स्थान इस्कॉन में अगर हम लोग देखें तो ब्रह्मचारियों के लिए शहर में रहते हैं, बाहर जाते हैं ग्रंथ वितरण तो हो सकता है थोड़ा बहुत बात करना पड़ता है, प्रभुपाद कहते हैं बस उतना ठीक है। अगर ग्रंथ वितरण करने गए हैं, दान मांगने गए हैं, तो अगर कुछ बातचीत करनी पड़ी ठीक बस उतना, उससे आगे बात नहीं करनी चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी ओर जो गृहस्थ भक्त हैं उन्हें ब्रह्मचारियों की मदद इस तरह करनी चाहिए कि जो स्त्रियां हैं उन्हें स्वतः कभी ब्रह्मचारियों से बात नहीं करनी चाहिए। अगर वे लोग इस नियम का पालन करें तो ब्रह्मचारी भी कर पाएंगे। तो ब्रह्मचारियों को प्रयास नहीं करना चाहिए कि जाके स्त्रियों से, और विशेष करके अकेले में तो कभी बात नहीं करनी चाहिए, और जरूरत पड़े सेवा के लिए जितना जरूरी बस उतना। तो जो स्त्रियां हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अनावश्यक ब्रह्मचारियों से बात नहीं करें। ब्रह्मचारी के लिए कहते हुए नारद मुनि ये भी कहते हैं कि उन्हें अगर वो गुरुकुल में रह रहे हैं और उनके गुरु की पत्नी युवती है तो फिर उसके साथ भी उन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वो आपको सिर पे कुछ तेल लगाए इत्यादि जैसे मां लगाती है, क्योंकि गुरु की पत्नी मां मानी गई है। सात माएं हैं, एक तो स्वतः की मां जो है आत्म, फिर ब्राह्मण की पत्नी को मां माना जाता है, गुरोर पत्नी मां माना जाता है, धेनु गाय को मां माना जाता है, पृथ्वी को मां माना जाता है, धात्री को मां माना जाता है। तो ऐसे सात माएं हैं, तो गुरु की पत्नी मां है, लेकिन अगर गुरु की पत्नी भी युवती हो तो ब्रह्मचारी को जाना नहीं चाहिए उनके पास। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात नारद मुनि कहते हैं, ये पाउडर और ये सुगंधित चीजें शरीर पे मालिश करना ये सब ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो आजकल के नाम जैसे जो नारद मुनि ने कहा, तो आजकल की स्थिति में कहें तो शैम्पू और क्या बोलते हैं उसको, हाँ परफ्यूम और अच्छे सुगंधित तेल और कुछ ऐसी चीजें बड़े बढ़िया शरीर में लगाकर, क्या बोलते हैं वो, क्या तो याद भी नहीं आ रहा इतने साल हो, क्रीम पाउडर, कोई जरूरत नहीं है ब्रह्मचारी को। उसको अगर सुंदर दिखना है तो कृष्ण की आंखों में सुंदर होना चाहिए, किसी और की आंखों में सुंदर होके क्या मिलने वाला, बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए सुंदर होना है तो गुण उत्पन्न कीजिए, कृष्ण के आंखों में सुंदरता प्रकट कीजिए। तो इसीलिए ये सब नहीं लगाना चाहिए, नारद मुनि कहते सुगंधित तेल नहीं लगाए। तो ध्यान रखिए अच्छे अच्छे साबुन जिसमें से बढ़िया, वो पहले पियर्स करके साबुन आता था, वो उसका एड आता था, बोलती थी वो छोटी बच्ची की मुझे भी मम्मी की तरह सुंदर बना दो, तो ना जरूरत नहीं ब्रह्मचारी को, सादा सादा जीवन। तो ये सब लगाना नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं कि बड़े सिंपल जो अथॉरिटी कहें जो नियम पालन है, साधारण धोती कुर्ता पहनना चाहिए, और धोती भी बहुत बॉर्डर वाली नहीं पहननी चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो गृहस्थ भक्त होते हैं उनके लिए ठीक है, वो लोग बॉर्डर वाली जरा स्टाइल की पहनते हैं, लेकिन ब्रह्मचारियों के लिए सादा जरूरी नहीं है, सिंपल रहना चाहिए। ठीक है धोती पहनना कुर्ता पहनना जो भी है उतना रहना चाहिए। तो नारद मुनि कहते ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा ये सब लगाना शरीर में, अपने आप को सुंदर बनाना कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ब्रह्मचारियों को रहना चाहिए आश्रम में। उद्देश्य अंत में नारद मुनि कहते हैं ऐसे अगर कोई रहेंगे आश्रम में तो निश्चित भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन बाकी सब करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और फिर आगे वो वानप्रस्थ का वर्णन करते हैं कि व्यक्ति प्रभुपद एक स्थान पर लिखते हैं बहुत सुंदर बात कि ब्रह्मचारी को आवश्यक नहीं है गृहस्थ बनना। ये जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास हैं, लोग कहते हैं एक के बाद एक चीजें हैं, आप कैसे इसको छोड़कर आप सीधे सन्यासी बन सकते हो। तो नारद मुनि भी कहते हैं और प्रभुपद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मचारी अवस्था से वो किसी भी अवस्था को जा सकते हैं, वो चाहे तो गृहस्थ बने या सीधे सन्यासी बने। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आवश्यक नहीं है ब्रह्मचारियों को गृहस्थ बनना, उन्हें सीधा सन्यास लेना चाहिए। हाँ, लेकिन जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो अपने आप को नहीं वश में रख पा रहे हैं, फिर वो गृहस्थ जीवन में जाए, फिर वानप्रस्थ बने और फिर सन्यास में। लेकिन ब्रह्मचारियों के लिए अच्छा है कि सीधे सन्यास में। तो वानप्रस्थ क्या है? तो वानप्रस्थ जीवन नारद मुनि कहते हैं कि व्यक्ति को वन में जाना चाहिए, हो सके तो 12 साल, नहीं तो 8 साल, नहीं तो 4 साल, नहीं तो कम से कम 1 साल तो वन में रहना चाहिए। और कैसे रहना चाहिए? कुछ पका हुआ नहीं खाना चाहिए, उसको केवल जो सूर्य की रोशनी से जो पके हुए फल हैं बस उसको स्वीकार करना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं से खरीद के ले आए, वानप्रस्थी हूं तो घर से सब आ रहा है सब बनकर, नहीं, वानप्रस्थ है तो सब छोड़ देना चाहिए। सरल जीवन जीना है और बहुत सरलता से रहना, उद्देश्य उनका भी भगवान की प्राप्ति। और ऐसे रहते हुए फिर उनको अपने देह को त्यागना। अंतिम विभाग वो बताते हैं कि कैसे जो सारे तत्व हैं, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, वायु है, जल है, उनको धीरे 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 उन्हीं में मिला देना है। अर्थात प्रमुखता वो अंत में बताते हैं कि आत्मा और पदार्थ को अलग करना है, ये जान लेना है कि आत्मा शाश्वत है, ये जो शरीर है, ये पदार्थ है, ये समाप्त होने वाला है, फिर उसको समाप्त करके अपने देह को उनको त्यागना चाहिए। तो ऐसे वानप्रस्थ के विषय में नारद मुनि वर्णन करते हैं कि उनको भी वानप्रस्थ भी एक अवस्था है, तो उनको भी उनके लिए कई नियम है कि कैसे उनको रहना चाहिए, उनको घर में नहीं रहना चाहिए, एक घास की कुटिया बनाकर रहना चाहिए और खाना भी बड़ा सरल चाहिए और ज्यादा किसी चीज में पड़ना नहीं, भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाना चाहिए। तो इस तरह इन दो आश्रमों का वर्णन नारद मुनि ने इस अध्याय में किया। और फिर अगले अध्याय में, अगले और दो अध्यायों में वो इन्हीं चीजों को आगे वर्णन करेंगे। जैसे आगे वर्णन करेंगे कि आदर्श व्यक्ति कौन है, फिर आदर्श पारिवारिक जीवन का वर्णन करेंगे, ऐसे इस स्कंद के अंत तक वर्णाश्रम धर्म का वर्णन वो करने वाले। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न?